एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम पर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो भाषाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं उनके बारे में।
हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा संकट है जिस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है, और इसे गहराई से समझने के लिए आज हम भाषाविद इवेंजेलिया एडमो के काम पर गौर कर रहे हैं।
हाँ, उनकी किताबें हैं एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस क्राइसिस नॉलेज एंड रिवाइटलाइजेशन, और दूसरी है शिफ्ट कम्युनिटी एंड रिवाइटलाइजेशन। हम इन्हीं के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
और ये आज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं। कहते हैं कि हर दो हफ्ते में दुनिया से एक भाषा मिट जाती है।
सोचिए जरा, ये सिर्फ मतलब बातचीत का एक तरीका नहीं खो रहा?
नो, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान का, संस्कृति का और दुनिया को देखने के एक पूरे नजरिए का नुकसान है। एडमो का काम हमें यही समझने में मदद करता है कि ये हो क्यों रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है।
तो पहले इवेंजेलिया एडमो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन है वो?
हाँ, तो इवेंजेलिया एडमो फ्रांस के CNRS यानी राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में एक सीनियर रिसर्चर हैं, और उनकी विशेषता है लुप्तप्राय भाषाएं और बहुभाषावाद।
अच्छा,
लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं है, उन्होंने दशकों तक, मतलब सच में सालों साल, जमीन पर काम किया है।
कहाँ कहाँ?
जैसे बाल्कन देशों में रोमानी भाषा बोलने वाले समुदायों के साथ, मेक्सिको के स्वदेशी समुदायों के साथ। तो उनके पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल अनुभव भी।
ये तो बड़ी बात है, मतलब सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर समझाए।
बिल्कुल, और वो खुद भी कई भाषाएं जानती हैं, ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश तो हैं ही, साथ में कई लुप्तप्राय भाषाएं भी। इससे उन्हें समझने में मदद मिलती है कि भाषाएं संपर्क में कैसे आती हैं, कैसे बदलती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं।
और उनका नजरिया कैसा है, मतलब रिसर्च करने का तरीका?
उनका जोर हमेशा समुदाय केंद्रित रिसर्च पर रहा है। वो मानती हैं कि भाषा बचाने का काम समुदाय की मर्जी और उनकी अगुवाई में ही होना चाहिए। बाहरी विशेषज्ञ सिर्फ मददगार हो सकते हैं, मालिक नहीं।
ये बहुत जरूरी बात है। तो फिर एडमो का जो काम है उसका मुख्य विचार क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि भाषा का गायब होना, जिसे हम अक्सर भाषा की मृत्यु कह देते हैं, वो कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक घटना नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो उसे भाषा बदलाव कहती हैं। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों की वजह से होती है। मतलब कुछ ताकतें हैं जो बड़ी प्रभावी भाषाओं को फायदा पहुंचाती हैं और छोटी भाषाओं को हाशिए पर धकेल देती हैं।
तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है।
बिल्कुल, और वो इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि जब कोई भाषा जाती है तो सिर्फ शब्द या व्याकरण नहीं जाते।
हाँ, आपने पहले जिक्र किया था ज्ञान का।
हाँ, ज्ञान का पूरा खजाना, खासकर पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में TEK कहते हैं, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। सोचिए, किसी इलाके के पेड़ पौधे, जानवर, मौसम, जड़ी बूटियां, इन सब का सदियों का ज्ञान जो अक्सर उसी भाषा में सहेजा होता है।
वो तो भाषा के साथ ही चला जाता होगा।
बिल्कुल, साथ ही हर भाषा दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का, यहां तक कि सोचने का एक अलग ढांचा देती है। इसे संज्ञानात्मक विविधता, कॉग्निटिव डाइवर्सिटी कहते हैं। तो भाषा खोना मतलब सोचने के एक संभावित तरीके को भी खो देना। और हाँ, ये सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। भाषा हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है, और अपनी भाषा बोलने का अधिकार, ये मानवाधिकार का भी मुद्दा है।
तो एडमो की किताबें हमें इस पूरे संकट की तस्वीर दिखाती हैं, इसके कारण समझाती हैं,
और सबसे जरूरी, वो समाधानों की बात करती हैं, खासतौर पर समुदाय आधारित समाधान। और ये किताबें सिर्फ भाषाविदों के लिए नहीं हैं।
हाँ, ये आम पाठक के लिए भी हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत या दुनिया की विविधता को बचाना चाहते हैं।
बिल्कुल, तो थोड़ा और विस्तार में जाते हैं, ये संकट कितना फैला हुआ है।
एडमो बताती हैं कि दुनिया में इस समय लगभग 7,000 भाषाएं हैं, और उनमें से आप मानिए आधी से ज्यादा पर अगले 100 सालों में लुप्त होने का खतरा है।
आधी से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है।
हाँ, यूनेस्को भी भाषाओं को उनके खतरे के स्तर के हिसाब से वर्गीकृत करता है। कुछ कमजोर हैं, कुछ निश्चित रूप से लुप्त प्राय, कुछ गंभीर रूप से लुप्त प्राय, और कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जैसा हमने कहा, ये पूरी ज्ञान प्रणालियां हैं जो दांव पर लगी हैं।
और ये होता क्यों है? एडमो इसके क्या कारण बताती हैं?
देखिए, ऐतिहासिक कारण भी हैं और आज के दौर के भी। इतिहास में देखें तो उपनिवेशवाद एक बड़ा कारण रहा।
हाँ, जहाँ शासकों ने अपनी भाषा थोपी और स्थानीय भाषाओं को दबाया।
बिल्कुल, फिर जब नए देश बने, राष्ट्र राज्य, तो अक्सर एक देश एक भाषा का नारा चला। इससे जो अल्पसंख्यक भाषाएं थीं वो कमजोर होती गईं।
जैसे यूरोप में ही कई भाषाएं हाशिए पर चली गईं, या अमेरिका में मूल निवासियों की भाषाओं के साथ हुआ।
सही, और आज के जमाने में?
आज वैश्वीकरण का बहुत बड़ा असर है। बाजार में कुछ भाषाओं का दबदबा है, उन्हीं में नौकरियां हैं, शिक्षा है, तो लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को वही भाषा सिखाएं जो काम आए।
हाँ, ये तो होता है, लोग अपनी भाषा को कई बार पिछड़ा हुआ भी मानने लगते हैं।
बिल्कुल, ये नकारात्मक सोच भी एक कारण है। फिर शिक्षा नीतियां हैं जो अक्सर एक ही प्रमुख भाषा पर जोर देती हैं। शहरीकरण है, जहाँ लोग गाँव की बोली छोड़कर शहर की भाषा अपनाने लगते हैं। ये सब मिलकर छोटी भाषाओं पर दबाव बनाते हैं।
लेकिन एडमो ये भी कहती हैं कि ज्यादातर मानव इतिहास में बहुभाषावाद, यानी एक से ज्यादा भाषा बोलना, आम बात रही है। ये एक भाषावाद का जोर तो नई चीज है।
हाँ, ये दिलचस्प है। वो उपयोग के डोमेन, डोमेन्स ऑफ यूज की बात करती हैं। मतलब भाषा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है।
जैसे?
जैसे घर में, दोस्तों के साथ, बाजार में, स्कूल में, दफ्तर में, पूजा पाठ में। एडमो कहती हैं कि भाषा बदलाव तब तेजी से होता है जब कोई भाषा सार्वजनिक जगहों, पब्लिक डोमेन से हटने लगती है और सिर्फ घर या निजी दायरे, प्राइवेट डोमेन्स तक सिमट जाती है।
अच्छा, मतलब जब बच्चे स्कूल में या दोस्त बाहर वो भाषा बोलना बंद कर दें।
हाँ, और फिर वो धीरे धीरे घर में भी कम होने लगती है। अगली पीढ़ी उसे स्वाभाविक रूप से नहीं सीख पाती।
और जब भाषाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जैसे भारत में तो ये बहुत होता है।
हाँ, भाषा संपर्क तो होता ही है, इसमें शब्द उधार लेना आम है। जैसे हम अंग्रेजी के कितने शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं।
और कोड स्विचिंग, मतलब बोलते बोलते एक भाषा से दूसरी में चले जाना।
वो भी, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। कभी कभी तो भाषाओं के व्याकरण भी एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं।
तो क्या ये हमेशा खतरे का संकेत है कि भाषा कमजोर हो रही है?
एडमो कहती हैं जरूरी नहीं। अगर एक स्वस्थ बहुभाषी माहौल है जहाँ सभी भाषाओं का सम्मान है, तो ये सब रचनात्मक भी हो सकता है, भाषा को समृद्ध भी कर सकता है।
लेकिन?
लेकिन अगर शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है, मतलब एक भाषा बहुत ज्यादा ताकतवर है और दूसरी कमजोर, तो यही प्रक्रियाएं उस कमजोर भाषा के और सिकुड़ने का संकेत बन सकती हैं। ये बारीकी समझना जरूरी है।
तो फिर से उसी सवाल पे आते हैं हम, असल में खोते क्या है जब एक भाषा चली जाती है? आपने पारंपरिक ज्ञान और सोचने के तरीकों की बात की, और क्या है?
देखिए, भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान का शायद सबसे अहम हिस्सा है। वो हमें जोड़ती है। हमारी कहानियाँ, हमारे गीत, हमारी परंपराएं उसी में लिपटी होती हैं। भाषा खोना मतलब अपनी जड़ों से कटना।
हाँ, ये एक तरह का सांस्कृतिक विस्थापन है।
बिल्कुल, और जैसा मैंने पहले कहा, ये मानवाधिकार का भी सवाल है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र भी कहते हैं कि हर किसी को अपनी भाषा इस्तेमाल करने, उसे सीखने सिखाने का अधिकार होना चाहिए।
एडमो का वो उद्धरण याद आता है जो आपने बताया था?
हाँ, कि हर बुजुर्ग जो एक भाषा को अपने साथ ले जाकर मर जाता है, वो एक जलते हुए पुस्तकालय जैसा है। मतलब कितना ज्ञान, कितनी कहानियां, कितने अनुभव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं।
ये बात सच में बहुत असरदार है। अच्छा, आज का दौर तो टेक्नोलॉजी का है, इसका क्या असर है भाषाओं पर?
देखिए, टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है, एडमो यही मानती है।
कैसे?
एक तरफ इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में कुछ ही भाषाओं का बोलबाला है, अंग्रेजी, मैंड्रेन, स्पैनिश, तो ये छोटी भाषाओं पर और दबाव डाल सकता है, उन्हें पीछे छोड़ सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में अपार संभावनाएं भी हैं। आप भाषाओं को रिकॉर्ड करके डिजिटल आर्काइव बना सकते हैं, भाषा सिखाने के लिए ऐप्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भाषा बोलने वालों का एक वर्चुअल समुदाय बना सकते हैं।
तो ये मददगार भी हो सकती है?
हाँ, बिल्कुल। चुनौती ये है कि छोटी, कम संसाधनों वाली भाषाओं के लिए इन तकनीकों का फायदा कैसे उठाया जाए, उसके लिए इच्छा शक्ति और संसाधन दोनों चाहिए।
एडमो एक और महत्वपूर्ण फर्क बताती हैं, भाषा के प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन और पुनरुद्धार, रिवाइटलाइजेशन के बीच। ये क्या अंतर है?
हाँ, ये समझना जरूरी है। प्रलेखन का मतलब है भाषा का रिकॉर्ड तैयार करना।
जैसे?
जैसे उसका व्याकरण लिखना, शब्दकोश बनाना, बोलने वालों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उनकी कहानियां, गीत वगैरह सहेजना। ये बहुत जरूरी काम है, खासकर जब भाषा बोलने वाले बहुत कम बचे हों,
ताकि कम से कम उसका एक रिकॉर्ड तो रहे।
बिल्कुल, लेकिन एडमो कहती हैं कि ये भाषा को बचाता नहीं है, सिर्फ संरक्षित करता है। ये ऐसा है जैसे किसी खूबसूरत फूल को तोड़कर किताब के पन्नों में दबाकर रख लिया जाए, वो सुरक्षित तो है पर जिंदा नहीं है।
और पुनरुद्धार?
पुनरुद्धार का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। उसका मकसद है भाषा को वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लाना, उसे फिर से एक जीती जागती सांस लेती हुई भाषा बनाना।
मतलब लोग उसे फिर से बोलें, बच्चे उसे सीखें।
हाँ, उसे घरों में, स्कूलों में, समाज में फिर से इस्तेमाल किया जाए। ये कहीं ज्यादा मुश्किल, ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं, ये एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जैसा है।
तो ये पुनरुद्धार सफल कैसे होता है? एडमो के अनुसार सबसे जरूरी क्या है?
सबसे अहम चीज जिस पर एमओ बार बार जोर देती हैं, वो है समुदाय का नेतृत्व और उनकी मालिकी,
कम्युनिटी लीडरशिप एंड ओनरशिप।
मतलब ये कि भाषा को बचाने या दोबारा जिंदा करने का फैसला और उसकी पूरी प्रक्रिया समुदाय की अपनी होनी चाहिए। बाहरी लोग जैसे भाषावेद या सरकार, वो मदद कर सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन कमान समुदाय के हाथ में ही रहनी चाहिए।
भाषाविद की भूमिका फिर क्या हो?
एमओ कहती हैं कि भाषाविद को उद्धारकर्ता यानी सेवियर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी भूमिका एक सहयोगी यानी पार्टनर और तकनीकी संसाधन यानी टेक्निकल रिसोर्स की होनी चाहिए, जो समुदाय की जरूरतों के हिसाब से काम करे।
क्या ऐसे सफल पुनरुद्धार के उदाहरण हैं दुनिया में?
हाँ, कई प्रेरणा देने वाले उदाहरण हैं, जैसे हवाई द्वीप में हवाईयन भाषा का पुनरुज्जागरण हुआ जो लगभग खत्म हो चुकी थी।
न्यूजीलैंड में माउरी भाषा के लिए कोहोंगा रेओ यानी भाषा के घोंसले शुरू किए गए।
ये भाषा के घोंसले क्या हैं? ये छोटे बच्चों के लिए प्री स्कूल जैसे होते हैं, जहाँ सारी बातचीत और पढ़ाई सिर्फ मौरी भाषा में होती है। इससे बच्चों को बचपन से ही भाषा सीखने का माहौल मिलता है।
अच्छा, और कोई उदाहरण?
वेल्स में वेल्श भाषा के लिए आंदोलन चला। अमेरिका में कई मूल निवासी समुदायों ने अपनी भाषाओं को बचाने के लिए मास्टर अप्रेंटिस जैसे कार्यक्रम चलाए, जहां एक बुजुर्ग बोलने वाला एक युवा सीखने वाले के साथ मिलकर रोजमर्रा के कामों में भाषा का इस्तेमाल करता है।
इन सभी सफल कोशिशों में क्या बात समान है?
दो चीजें मुख्य हैं। एक को भाषा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन, मतलब बच्चे भाषा को अपने बड़ों से सीखें और बोलें।
और दूसरा?
दूसरा, भाषा के इस्तेमाल के लिए नए अवसर और जगह बनाना या पुरानी जगहों को मजबूत करना, जैसे उसे शिक्षा में शामिल करना, मीडिया में जगह देना, सरकारी कामों में इस्तेमाल करना।
इसमें तो फिर सरकारी नीतियों का भी रोल होगा।
बहुत बड़ा रोल। सरकार की नीतियां या तो मददगार हो सकती हैं, जैसे अल्पसंख्यक भाषाओं को कानूनी मान्यता देना, स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा लागू करना, या फिर वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं अगर वो सिर्फ एक ही भाषा को बढ़ावा दें और बाकियों को नजरअंदाज करें। एडमो इस पर भी विस्तार से बात करती हैं।
तो कुल मिलाकर भविष्य कैसा लगता है? क्या इन भाषाओं को बचाया जा सकता है?
एडमो आशावादी हैं, लेकिन यथार्थवादी भी। वो मानती हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन सफलता नामुमकिन नहीं है।
क्या चाहिए उसके लिए?
एक समग्र नजरिया चाहिए, सिर्फ भाषा पर ही नहीं बल्कि उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर भी ध्यान देना होगा जो अक्सर भाषा के खत्म होने की जड़ में होती हैं। और सबसे जरूरी है समुदायों का सशक्तिकरण और समाज में जागरूकता।
अगर हम एडमो के काम के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें कुछ पॉइंट्स में समेटना चाहें तो क्या कहेंगे?
पहला तो यही जो हमने शुरू में कहा था कि इसे भाषा की मृत्यु नहीं बल्कि भाषा बदलाव समझें। ये एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, समुदाय की केंद्रीय भूमिका। भाषा को बचाना या पुनर्जीवित करना है तो उसकी कमान बोलने वाले समुदाय के हाथ में होनी चाहिए। बाहरी मदद जरूरी है, पर नेतृत्व अंदर से आना चाहिए।
तीसरा?
तीसरा, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है, एक तरह से हमारा सांस्कृतिक डीएनए।
चौथा पॉइंट क्या होगा?
चौथा, हर भाषा अपने आप में ज्ञान का एक अनूठा भंडार है, खासकर पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान जो भाषा के साथ ही लुप्त हो जाता है।
और पांचवा?
पांचवा, ये मुद्दा अक्सर शक्ति, राजनीति और सामाजिक न्याय से जुड़ा होता है। अपनी भाषा खोना कई बार बुनियादी मानवाधिकारों का हनन भी होता है। भाषाई न्याय एक अहम पहलू है।
और हाँ, वो प्रलेखन और पुनरुद्धार वाला फर्क भी याद रखना चाहिए। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों के लक्ष्य अलग हैं।
बिल्कुल।
और भारत जैसे देश के लिए ये सारी बातें कितनी प्रासंगिक हैं। हमारे यहाँ तो भाषाओं और बोलियों की इतनी विविधता है।
हाँ, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सी छोटी भाषाएं और बोलियां यहाँ भी दबाव में हैं। हिंदी और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव में वो सिकुड़ रही हैं।
सही कहा, हमें अपनी इस भाषाई विरासत को सहेजने और सम्मान देने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।
एडवो के काम में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो कहती हैं, जब हम एक भाषा खोते हैं तो हम ब्रह्मांड को समझने का एक अनूठा तरीका खो देते हैं।
हाँ, ये भाषा और सोच के गहरे संबंध की ओर इशारा करता है। या ये कहना कि भाषा का संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय निर्णयों और नीतियों का परिणाम है। ये सीधे सीधे जिम्मेदारी तय करता है।
और वो पुनरुद्धार को वी उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन का एक कार्य कहती हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, ये भाषा को सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और राजनीतिक अधिकार से जोड़ता है। समुदायों के लिए अपनी पहचान और अपना भविष्य वापस पाने का एक जरिया।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? मतलब एक आम इंसान क्या कर सकता है?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपनी और दूसरों की मातृभाषाओं और बोलियों का सम्मान करना सीखें, उन्हें कमतर न समझें।
हाँ, कई बार हम अनजाने में ही मजाक उड़ा देते हैं किसी के बोलने के लहजे का या बोली का।
बिल्कुल, उससे बचना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई पुरानी भाषा या बोली है तो कोशिश करें कि वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। बच्चों को अगर संभव हो तो एक से ज्यादा भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुभाषावाद दिमाग के लिए भी अच्छा होता है।
और समाज के स्तर पर, स्कूलों में, आस पड़ोस में?
स्कूलों में शिक्षक बच्चों की घरेलू भाषाओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, उन्हें क्लास में थोड़ी जगह दे सकते हैं। समुदायों में अगर कोई स्थानीय भाषा को बचाने का प्रयास कर रहा है तो उनका समर्थन कर सकते हैं।
कम से कम उनके बारे में जान तो सकते हैं।
हाँ, बस अपने आसपास जो भाषाई विविधता है उसके प्रति थोड़ा और जागरूक होना, थोड़ा और संवेदनशील होना, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। कभी सोचे कि हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कितनी तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं।
सही कहा। तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे अहम सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाषाई विविधता सिर्फ एक रंगीनियत या सजावट की चीज नहीं है, ये मानव समाज के ज्ञान, अनुभव और रचनात्मकता का एक बुनियादी हिस्सा है। इसे बचाना हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और ये काम जरूरी भी है और संभव भी, अगर समुदाय चाहें तो।
और मेरे लिए शायद ये एहसास और गहरा हुआ कि भाषा का मुद्दा कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारी पहचान से, हमारे ज्ञान से, हमारे इतिहास से, हमारे अधिकारों से, यहाँ तक कि पर्यावरण से भी। ये सिर्फ बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है। अडमो का काम इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझने में बहुत मदद करता है।
हाँ, वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलिए, अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं, एडमो के विचारों से ही जुड़ा हुआ। अगर भाषाएं हमारी सोच को किसी ना किसी तरह से आकार देती हैं, तो दुनिया में भाषाओं का लगातार कम होते जाना हमारी सामूहिक मानवीय सोच की क्षमता को कैसे सीमित कर रहा होगा?
या एक और छोटा ज्यादा व्यवहारिक सवाल, आज आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास बोली जाने वाली किसी छोटी भाषा या बोली को थोड़ा और सम्मान देने या उसके बारे में जानने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।